الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो इस छोटे से खुतबे और दुआओं के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं, जो कि सूरह माईदा की तफसीर पर मुश्तमिल होती है, जो हम मारुफुल कुरान की जिल्द नंबर 3 में से पढ़ रहे हैं। तो अभी तक पहली ही आयत की तफसीर पढ़ रहे हैं, सफ़ा नंबर 13 पर थे हम आखिरी क्लास में, जो पिछले हफ्ते बुध के दिन हुई थी। तो इसमें यानी एक ही आयत है, तो उसका तर्जुमा एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वालों से खिताब करते हुए फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, औफ़ बिल उकूद, अपने वादों को पूरा करो। फिर उसके बाद फरमाते हैं उहिल्लत लकुम, तुम्हारे लिए हलाल किए गए हैं, बहीमतुल अनआमी, चौपाए मवेशी, ठीक है, चौपाए मवेशी तुम्हारे लिए हलाल किए गए हैं, इल्ला मा युतला अलैकुम गैरा मुहिल्ल सैदी, सिवाय उनके के जो तुम्हारे तुम्हारे ऊपर, जिनके बारे में अभी जिक्र आएगा, युतला अलैकुम तिलावत की जाएगी तुम्हारे ऊपर, गैरा मुहिल्ल सैदी, मगर हलाल ना जानो, यानी शिकार को हलाल ना जानो, वह अंतुम हुरम, इस हाल में कि तुम हराम एहराम की हालत में हो या हरम के अंदर हो। शिकार वैसे तो हलाल है, उसको हलाल ही समझो, अगर तुमने हलाल जानवरों का शिकार किया है वो हलाल है तुम्हारे ऊपर, लेकिन इस हाल में नहीं कि अगर तुम यानी जिस हाल में तुम एहराम में हो या हरम के अंदर हो। इन अल्लाह यहकुमु मा युरीद, कैसा शाहाना खिताब है अल्लाह रब्बुल इज्जत का कि बेशक अल्लाह ताला जो चाहता है हुक्म करता है। ये अल्लाह ताला को सजता है कि जो चाहे करे, किसी और को नहीं सजता कि वो जो चाहे करे, लेकिन अल्लाह को सजता है, अल्लाह ताला को बिल्कुल 100% डिजर्विंग है। इन अल्लाह यहकुमु मा युरीद, ठीक है, बहुत ही अजीम अजीम शान जुमला उस अजीम परवरदिगार ने हमें फरमाया है इन चंद अल्फाज के अंदर। तो सफा नंबर 13 के ऊपर हम ये जो अहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम की तशरीह में पढ़ रहे थे कि बहीमा जो है वो उन जानवरों को कहा जाता है कि जिनको के गैर ज़वेल उकूल यानी बगैर अकल वाले समझा जाता है, ठीक है, लेकिन उसकी वजह क्या है कि उनकी बोली को हम लोग नहीं समझ सकते, ठीक है, वरना उनके पास अकल होती है, उनके अंदर अकल होती है। तो गैर ज़वेल उकूल का यहाँ पर यह मतलब नहीं है कि वो अकल से पैदल होते हैं, अकल से पैदल तो हम और आप होते हैं अगर अल्लाह की नहीं मानते हैं, वो अकल से पैदल नहीं होते, ठीक है। तो फिर गैर ज़वेल उकूल कहा क्यों जाता है, ये पिछले एक क्लास में बात हुई थी कि बस वो डिग्री ऑफ रूह जो है ना, जो इंटेंसिटी, जब जो वोल्टेज ऑफ रूह है उनके अंदर, वो कम होती है बनिस्बत इंसान के और जिन के। इसी वजह से इंसान और जिन, जिनमें रूह की वोल्टेज जो है वो ज्यादा होती है, तो उनको ज़विल उकूल कहते हैं यानी अकल वाले, और बाकियों को गैर ज़विल उकूल कहते हैं। अच्छा, ये पढ़ के हम आगे अगले पैराग्राफ पे आते हैं कि इमाम शेरानी रहमतुल्लाह अलैह के फरमाने का खुलासा ये है, यानी ऊपर जो कुछ उन्होंने फरमाया हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया और अभी थोड़ा सा उसकी समरी भी कर ली, तो उसका खुलासा ये है कि बहीमा को बहीमा इसलिए नहीं कहते कि उसकी बेअकली के सबब मालूमात उस पर मुबहम रहते हैं। बहीमा का लफ्ज इबहाम से निकला, इबहाम का मतलब अनक्लियर, मुबहम, ठीक है, तो इस वजह से उनको बहीमा नहीं कहते कि उनके ऊपर जो है ना वो मालूमात नहीं खुलती हैं, उनको बात समझ में नहीं आ रही होती है, उनके अंदर अकल नहीं होती है, बल्कि क्यों कहते हैं, इसलिए कि उनकी बोली हम लोग नहीं समझते, उनकी बोली हम लोग नहीं समझते, ठीक है, ये है बहीमतुल अनाम। अब इनको कौन हिदायत अता फरमाए सवाए अल्लाह के, क्या किया जाएगा। चले अल्लाह ताला जजा देगा इंशाल्लाह। एक मिनट है जी। चले तो फरमाते हैं कि जी हम उनकी बोली नहीं समझते। अब ये इंसान की भी एक मजे की शान है कि बात खुद समझ में ही नहीं आ रही, लेकिन इल्जाम दूसरे के ऊपर, ठीक है, कि वो जो है ना बेवकूफ है। भाई आपको उसकी बात समझ में नहीं आ रही तो आप बेवकूफ हैं कि वो बेवकूफ है, ठीक है, लेकिन उसको जो है वो बहीमा। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अरबी जुबान जो कि इंसानों में राइज थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी अरबी जुबान को अपने कुरान मजीद में इस्तेमाल फरमाया है, ठीक है। तो ये इंसानों का कसूर तो कहलाएगा, अल्लाह का तो ये कसूर नहीं है, यानी कि अल्लाह ताला ने इनका नाम जो है वो बहीमा रखा, इंसानों ने इनका नाम बहीमा रखा। मसला जो है वो असल में तो इंसान का था कि उनको सब बात समझ में नहीं आती थी, तो उनको बात समझ में आती है, यानी जानवरों को बात समझ में आती है, लेकिन अल्लाह ने उनको गोयाई अता नहीं फरमाई है, मंतिक बल्कि नुतुक, ठीक है। इसी वजह से इंसान को हैवान नातिक कहते हैं कि इसकी ऐसी बोली होती है कि जो कि दूसरे इंसान भी समझ सकते हैं, हैवान जो होता है वो नातिक नहीं होता। तो इसका कलाम लोगों पर मुबहम रहता है। बहरहाल लफ्ज़ बहीमा हर जानदार के लिए बोला जाता है, और बाज़ हजरात ने फरमाया, यानी बाज़ उलमा मशायख हजरात ने फरमाया कि चौपाया जानवरों के लिए यह लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अरबी जुबान की डिक्शनरी में भी मुख्तलिफ मजाहिब हैं, किसी एक मजहब के मुताबिक जो है वो बहीमा हर जानदार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा मजहब, मजहब मीन्स जस्ट एक चलने का रास्ता, एक तरीका, एक तरीक, ठीक है। तो ये मजहब जो है फिर हर जगह पे मजाहिब होते हैं, फिका में खाली मजाहिब नहीं होते, ठीक है, बल्कि किसी साइंस के अंदर भी मुख्तलिफ मजाहिब हो सकते हैं, किसी और टेक्नोलॉजी के अंदर भी मुख्तलिफ मजाहिब हो सकते हैं, उसी तरह से लैंग्वेजेस के अंदर भी मुख्तलिफ मजाहिब हो सकते हैं। तो दो मजहब यहाँ पे बयान फरमा दिए। अच्छा, फिर उसके बाद लफ्ज अनआम के तहत फरमाते हैं कि और लफ्ज अनआम नाम की जमा है, पालतू जानवर जैसे ऊंट, गाय, भैंस, बकरी वगैरह, जिनकी 8 किस्में सूरह अनआम में बयान फरमाई गई हैं। तो कुदरतन सूरह अनआम जी भी जो है वो खवातीन में चल रही है, तो वहां पर जब 8 किस्में आएंगी तो वो हम पढ़ लेंगे। अभी मुझे मौका नहीं मिला कि वहां जाकर के आपके लिए पढ़ा था, लेकिन अब जहन में एग्जैक्टली वो नाम नहीं है, किसी को अगर मिल जाए तो वो यहाँ पे कंटेंट पेस्ट कर दें। लेकिन 8 किस्में जो है ना वो सूरह अनआम में बयान की गई हैं, उनको अनआम कहा जाता है। बहीमा का लफ्ज आम था, अनआम के लफ्ज ने उसको खास कर दिया, ठीक है, यानी वो बड़ा ओपन एंडेड था, इसने उसको क्लोज एंडेड कर दिया अनआम के लफ्ज ने, या उसको मुकैद कर दिया अनआम के लफ्ज ने। यहाँ पर सारे जानदार मुराद नहीं है, या सारे चौपाए मुराद नहीं है, बल्कि सिर्फ वो चौपाए जिनको के अनाम की डेफिनेशन में रखा जाता है। फिर उसके बाद मजीद भी मुकैद किया आगे के उनमें से भी, तो मुराद आयत ये हो गई कि घरेलू जानवरों की 8 किस्में तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई हैं। लफ्ज अकूत के सॉरी लफ्ज अकूत के तहत में अभी आप पढ़ चुके हैं कि अभी आप पढ़ चुके हैं कि तमाम मुआहिदात दाखिल हैं, प्रॉबेबली 4 पेयर्स। ये प्रॉबेबली तो नहीं चलता ना, अब यहाँ पे मतलब है तो है, नहीं है तो नहीं है, प्रॉबेबली कहाँ से आ गया इसमें, कैमल का काउ गोट एंड शीप। अच्छा, अगर है पता तो ठीक है, आप बताएं, मैं आपको शक नहीं कर रहा, लेकिन लफ्ज प्रॉबेबली के साथ जो है ना वो शदीद इख्तलाफ है। बहरहाल तो लफ्ज अकूत के तहत में अभी आप पढ़ चुके हैं कि तमाम मुआहिदात दाखिल हैं, उनमें से एक मुआहिदा वो भी है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों से हलाल और हराम की पाबंदी के मुतअल्लिक लिया है। हलाल और हराम की पाबंदी से मुतअल्लिक, ठीक है, यानी ये नहीं कि पहला तो हो गया ना ऑल एनकम्पसिंग मुआहिदा के अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं हूँ, सब ने इकरार कर लिया, यानी मुआहिदा कर लिया अल्लाह ताला के साथ कि हाँ हम आपको रब मानते हैं, लेकिन अब उसकी यानी निटी ग्रिटीज भी, उसकी डिटेल्स भी, कि मेरा हुक्म भी तुमने मानना है, ठीक है। तो अहकामात के मामले में फिर मुआहदा अलग है। तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों से हलाल और हराम की पाबंदी के मुताबिक मुआहदा लिया है, वो भी इसमें दाखिल है। इस जुमले में इस खास मुआहदे का बयान आया है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ऊंट, बकरी, गाय, भैंस वगैरह को हलाल कर दिया है, उनको शरई कायदे के मुवाफिक जबाह करके खा सकते हैं, ठीक है। यानी वो जो चार में से तीन रगों को काटने का जो है तरीका, तो उसकी तफसील है। बहरहाल वो बकरी के जमाने में ज्यादा याद आती है कैसे जबाह करना है। अच्छा, तो वो तरीका है ज़बह करने का, उसमें ज़बह करके फिर खा सकते हैं, झटका करके नहीं खा सकते, कत्ल करके या गोली से उड़ा करके उनको नहीं खा सकते। अल्लाह ताला के इस हुक्म की इन हदूद के अंदर रख कर पाबंदी करो, ना तो मजूसी और बुत परस्तों की तरह मुतलकन इन जानवरों के ज़बाही को हराम करार दो, ठीक है। जैसे हिंदुओं में आज भी हमें मालूम है कि बाय द बुक तो कम अज़ कम उनके यहाँ गोश्त हलाल ही नहीं है, ठीक है। तो वेजिटेरियन होते हैं, आज भी बहुत सारे हिंदू वेजिटेरियन होते हैं, अगरचे के बहुत सारे जो है वो नॉन प्रैक्टिसिंग, जिस तरह मुसलमान नॉन प्रैक्टिसिंग है, तो भाई हिंदू भी तो बहुत सारे नॉन प्रैक्टिसिंग होते हैं, उन्होंने भी गोश्त को खाना सब शुरू कर दिया है, लेकिन उनकी उनकी जो शरीयत है उसके अंदर गोश्त हराम। तो ना उस एक्सट्रीम पे जाओ। अच्छा, मजूसी जो है, फायर वर्शिपर्स या पारसी लोग, इनके यहाँ भी ऐसा लगता है इस बात से कि गोश्त जो है वो बिल्कुल ही हराम है, तो ना इस तरह से हराम करार दो कि ये हिकमत हक जल्ल शानहू पर एतराज और उसकी नेमत की नाशुकरी है, ठीक है। अल्लाह ताला ने सेट किया है ना तुम्हारे लिए क्या चीज जायज है क्या चीज नाजायज है, अपनी अकल से तुम करोगे तो हिंदुओं की तरह से वो तुम्हारा ट्रेडिशन तो बन जाएगा, ठीक है। हिंदुओं की तरह से तो वो तुम्हारा ट्रेडिशन बन जाएगा, लेकिन वेस्ट में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉन ट्रेडिशनली, बगैर किसी ऑर्गेनाइज रिलीजन को फॉलो किए हुए, बस प्योरली अपनी अकल की बुनियाद पर कहते हैं कि नहीं जी, ये तो एक जान है, उसको कैसे दबा करें, उसको कैसे कत्ल करें और फिर हम उसको खाएं। तो वो भी बहुत सारे वेजिटेरियन बने हुए हैं इस वजह से, नहीं कि वो हिंदू हैं या मजूसी हैं, बल्कि प्योर इंटेलेक्ट वर्शिपर्स, राइट, इंटेलेक्ट वर्शिपर्स, तो उन्होंने भी गोश्त को अपने पर हराम किया हुआ है। तो ऐसा ना करो, और ना दूसरे गोश्तखोर फिरकों की तरह बेकैद होकर हर तरह के जानवर को खा जाओ। गधा भी खा रहे हैं तो अजीबोगरीब किस्म के, यानी चाइनीज कल्चर भी है और बहुत सारे दूसरे कल्चर्स हैं जिनमें कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सांप, ना जाने क्या क्या जो है वो चीजें खा रहे होते हैं। और वो पिछले किसी क्लास में बात भी हुई थी कि इंसेक्ट्स जो है ना, उनके ऊपर वो हो रहा है कि अब उनको किस तरीके से जो है वो हम अपने इस रेगुलर डाइट के अंदर लेकर के आए, इंसेक्ट्स आ जाएंगे तो फिर सारे मसले ही खाने पीने का हल हो जाए। पहले कौन सा मसला था, खाना तो इतना पहले ही बढ़ा चुके हो, अब इंसेक्ट्स के पीछे पड़े हुए हो, इंसेक्ट्स को भी खाना है तुमने, चाइनीज तो पहले ही वैसे भी खाते हैं। तो इस तरह से अपनी जो है ना मन मर्जी मत चलाओ, मन मर्जी जो है ना ये नहीं है, मन मर्जी तुम्हारी अल्लाह ताला पूरी करेंगे मरने के बाद, ये मरने से पहले अपनी मनमर्जी पूरी करने की कोशिश ना करो। तो फरमाते हैं कि बल्कि अल्लाह ताला के दिए हुए कानून के तहत जिन जानवरों को उसने हलाल किया है उनको खाओ, यानी उनको खाओ, उनको अपने ऊपर हराम मत करो, और जिन जानवरों को हराम करार दिया है उनसे बचो, उनको अपने लिए हलाल ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला ही खालिक कायनात हैं, वो हर जानवर की हकीकत और खवास से और इंसान के अंदर वो हर जानवर की हकीकत और खवास से और इंसान के अंदर उनसे पैदा होने वाले असरात से वाकिफ है, ठीक है। अल्लाह ताला हर जानवर की हकीकत के उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसके अंदर क्या क्या जो है वो उनके सिस्टम्स हैं, उनका ब्लड सिस्टम कैसा है, उनका जो है वो टिश्यू सिस्टम कैसा है, उनका जो है वो खाने पीने का सिस्टम कैसा है, उनका जो है वो रिलीफ करने का अपने आप को उसका सिस्टम कैसा है, पूरी हकीकत से वाकिफ है। भाई उन्होंने ही तो बनाया है सारा का सारा ये, ठीक है। तो वो उसकी हकीकत से वाकिफ नहीं होंगे तो फिर क्या फायदा, बनाया है बस, पता कुछ नहीं है उसके अंदर क्या है, ये किस किस्म का क्रिएटर हुआ भाई, कि बना तो दिया है लेकिन पता कुछ नहीं कि क्या बनाया है। ये तो हमारे जैसा कोई बावला ही हो सकता है, इस किस्म का इंसान, बना तो दिया है लेकिन पता कुछ नहीं है। तो अल्लाह ताला तो ऐसे नहीं है ना, अल्लाह ताला को तो सब कुछ पता है कि उसने क्या बनाया है। और उसकी खवास से, यानी उसकी जो क्वालिटीज हैं, उसके अंदर जो खास बातें हैं, उन सब से अल्लाह ताला जो है वाकिफ हैं। अच्छा, सिर्फ उसके अपने उससे नहीं, बल्कि उसके जो कंजम्पशन से इंसान के ऊपर जो जो इफेक्ट्स होते हैं, अल्लाह ताला उससे भी वाकिफ है ना। ठीक है, क्या मतलब कि जो हम चीज खाते हैं तो उसका इफेक्ट होता है हमारे ऊपर, असर होता है उसका हमारे ऊपर। ठीक है, अच्छी चीज का अच्छा असर होता है, बुरी चीज का बुरा असर होता है। ठीक है, ये बिल्कुल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, बिल्कुल न्यूटन्स लॉ है। ठीक है ना, फर्क सिर्फ ये है कि न्यूटन जो था उसने जो नजर आने वाली चीजें नहीं थी उनको उसने डिनाई कर दिया, और जो सिर्फ नजर आने वाली चीजें थी उसके अंदर ही अपनी लॉ लगा दी। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन, या एवरी कॉज हैज एन इफेक्ट। ठीक है ना, अब उसके नजदीक कॉज जो था वो सिर्फ फिजिकली परसीवेबल कॉज थे, तो रिलीजन की उसने नफी कर दी, मुआजात की उसने नफी कर दी। ठीक है ना, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यही निजाम बनाया है, बिल्कुल यही निजाम बनाया है कि एवरी कॉज हैज एन इफेक्ट। ठीक है, तो कॉज करोगे तो इफेक्ट होगा, ऐसा नहीं होगा कि कॉज करोगे और इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट तो होके रहेगा। ठीक है, अच्छा हो या बुरा हो वो डिपेंड करता है किस किस्म का कॉज है। ठीक है, चलो इन्होंने कंफर्म भी कर लिया, तो अपने प्रॉबेबली का कफारा अदा कर लिया कंफर्म करके, और बता रहे हैं कि कंफर्म फोर बेयर्स ही हैं। तो यही चार हैं, अनाम, कैमल, शीप, गोट एंड काउस, और आठ इसलिए लिखा क्योंकि मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, इस तरह से। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अच्छा, तो असरात से भी अल्लाह ताला वाकिफ हैं, वो तय्यबात यानी पाक और सुथरी चीजों को इंसान के लिए हलाल करते हैं क्योंकि उनका अच्छा असर होगा, जिनके खाने से इंसान की जिस्मानी सेहत पर या रूहानी अखलाक पर बुरा असर नहीं पड़ेगा, और गंदे नापाक जानवरों से मना फरमाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए मोहलिक हैं या उनके अखलाक खराब करने वाले हैं। इसीलिए इस हुक्म आम से चंद चीजों का इस्तिस्ना फरमाया है। ठीक है, यानी असर जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक होता है जिस्मानी असर और एक होता है रूहानी असर। ठीक है, तो वैसे तो जो दीन का जो जो प्रिंसिपल है, ठीक है, जो दीन की हकीकत है, वो तो ये है कि जिस चीज को अल्लाह ताला ने मना किया है ना, उस चीज का जिस्मानी असर भी बुरा होता है और रूहानी असर भी बुरा होता है। ठीक है, जिस्मानी असर भी बुरा होता है और रूहानी असर भी बुरा होता है जिस चीज को अल्लाह ताला ने मना किया है, क्योंकि अल्लाह ताला के मना करने की हिकमत यही है। ठीक है, कि भाई इंसान के लिए वो नुकसानदेह है, अब वो खाली रूहानी तौर पर नुकसानदेह नहीं है, वो जिस्मानी तौर पर भी नुकसानदेह है। फर्क इसके अंदर ये है कि जिस्मानी बात जब आती है तो वहां पर हम जो है ना वो मौलवी साहब को छोड़ करके साइंसदान साहब की मानना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और साइंसदान साहब जो हैं वो फिर अपनी लेबोरेटरी के अंदर जो उन्होंने मुशाहिदे किए होते हैं, जो उन्होंने तजुर्बात किए होते हैं, वो क्या समझते हैं कि वही खुदा हैं, और उन्होंने जो तजुर्बात किए हैं और मुशाहिदे किए हैं तो वो हकीकत है, और हम उनके ऊपर चूंकि ईमान रखते हैं, आमन्ना व सद्दकना, हमने स्कूल सिस्टम के अंदर या अपने माँ बाप के असर के तहत हमने साइंस के ऊपर आमन्ना व सद्दकना का हल्फ उठाया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से साइंसदान साहब कहते हैं नुकसानदेह है तो हम मानेंगे नुकसानदेह है जिस्मानी तौर पर, और अगर साइंसदान साहब कह देंगे नहीं ये नुकसानदेह नहीं है तो हम मानेंगे कि नहीं नुकसानदेह नहीं है ये। ठीक है ना, तो जिस्मानी दुनिया के अंदर हमारा चूंकि ईमान उनके ऊपर बना हुआ है, ठीक है, तो इस वजह से मौलवी साहब भी थोड़े थोड़े कभी कभी जो है ना, मौलवी साहब भी जरा सा बैक स्टेज पे चले जाते हैं, जरा से वो एहतियात कर लेते हैं और कहना शुरू कर देते हैं कि भाई रूहानी तो है ना, राइट, रूहानी तो असर है ना, जिस्मानी हो या ना हो रूहानी तो बुरा असर होता ही है हराम को करने से। तो उसका मतलब ये नहीं है कि मौलवी साहब को पता नहीं है बात, मौलवी साहब को भी पता है, और मौलवी साहब भी अलहमदुल्ला जो अच्छे अहले हक मौलवी साहब होते हैं उनको ये बात इस बात पर यकीन भी होता है कि नहीं जिस्मानी नुकसान भी है, लेकिन हमारे जो लेवल ऑफ फेथ बना हुआ है साइंस के ऊपर या अपने मुशाहिदे के ऊपर, जो 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 इंटेंसिटी ऑफ फेथ है हमारा इन चीजों के ऊपर, इसकी वजह से थोड़ा सा वो नरमी कर लेते हैं कि भाई कहीं ये जो है ना ये बिल्कुल ही इनकार करके काफिर ही ना हो जाए, फिर इनके फिर निकाह दोबारा पढ़ाना पड़ जाएगा मुझे। ठीक है, या इनको जो है वो कुछ और इनके साथ मामला करने पड़ जाएंगे, काफिर के साथ जिस तरह मामला होते हैं। तो बस यार ठीक है, जिस्मानी तौर पर जो है ना वो रहने दो, रूहानी तौर पर बस असर पड़ता है। हम वो भी नहीं मानते फिर, हम रूहानी दुनिया वाली बात भी नहीं मानते उनकी। ठीक है, तो हकीकत यही है कि गुनाह यानी अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कोई जानवर खाओगे या अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कोई भी काम करेंगे उसका नेगेटिव असर होगा। ठीक है ना, खलास पीरियड डॉट, नो क्वेश्चंस अबाउट इट, नो क्वेश्चन अबाउट इट। ठीक है, अब दज्जाल और शैतान, शैतान का सबसे बड़ा हथियार जो है वो दज्जाल है। ठीक है, दुनिया के अंदर जो के इंसानी शक्ल के अंदर आएगा। ठीक है, तो दज्जाल की सारी मेहनत इस दौर में जो के फितरे दज्जाल का दौर कहलाता है, इस दौर के अंदर उसकी मेहनत जो है ना वो क्या है कि इंसान को, बल्कि मुसलमान को, इंसान को बल्कि मुसलमान को इस धोखे में मुब्तला कर दे कि नहीं, ये जो भी अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई भी नेगेटिव चीज है ना, कोई भी नेगेटिव असर है ना, इट हैज एब्सोल्यूटली नथिंग टू डू विद अल्लाह हुक्म, अल्लाह के हुक्म से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बस ये एक रैंडम अकरेंस है, ये हो जाती है लोगों के साथ, चलता फिरता ही तो जिंदगी का मामला है, मामला है तो हो जाता है यार, सबके साथ ही होता है। अल्लाह के हुक्म के तोड़ने के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये है फितने दज्जाल, और ये ऐसे धोखा उसने दिया हुआ है कि ये हर छोटे बड़े को लग गया है, इल्ला माशाल्लाह। इस वजह से ना हमारी सारी तवज्जो जो है वो सारे दूसरे मामलात के ऊपर है, सारे दूसरे एक्शन आइटम्स के ऊपर है, सारे दूसरे एफर्ट्स के ऊपर है, सारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर है, सिवाय तौबा के, सिवाय तौबा के। हर चीज के ऊपर हमारी एफर्ट्स इस वक्त लगी हुई हैं, सोशल मीडिया प्रोटेस्ट हो या जो है वो स्ट्रीट प्रोटेस्ट हो या जो है वो और दूसरी किस्म की गप्पे हो, तकरीरें हो, नारे हो, शारे हो, सब कुछ हो, सब कुछ करेंगे सिवाय तौबा के, हत्ता के दुआ भी मांग लेंगे, अल्लाह उनकी मुसीबत को दूर फरमा, अल्लाह उनकी मुश्किल को आसान बना, दुआ भी मांग लेंगे, तौबा नहीं करेंगे, क्योंकि ये कनेक्शन हमने तोड़ दिया है, ये कनेक्शन हमने काट दिया है शैतान के धोखे में आकर, कि ये जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ अल्लाह के हुक्मों की खिलाफ वर्जी की वजह से हो रहा है। ठीक है ना, सिर्फ अल्लाह के हुक्मों की खिलाफ वर्जी की वजह से हो रहा है और किसी दूसरी वजह से नहीं हो रहा है सब कुछ, ये कनेक्शन हमने काट दिया है। और उस पर सोने पे सुहागा, जो डीप फेक वीडियोस होती हैं, डीप फेक वीडियोस जो इंटरनेट के ऊपर वायरल होती हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती हैं, उन वीडियोस के जरिए से ये बात भी जो है ना वो, यानी ये जो कनेक्शन काटा है ये इतने आसानी से को थोड़ी हमने काट दिया है, इसके ऊपर भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, इसके ऊपर टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल हो रही है कि भाई जिनके साथ बुरा हो रहा है वो तो बहुत बड़े नेक इंसान लोग हैं, वो तो बहुत नेक लोग हैं जिनके साथ भी हो रहा है, तो जब इतने नेक लोग हैं तो फिर तो जाहिर सी बात है इसका कोई ताल्लुक ही नहीं अल्लाह ताला के हुक्मों के खिलाफ वर्जी के साथ। ठीक है ना, तो ये किधर से आया है, सोशल मीडिया वीडियोस के जरिए से, जिसका ना सर होता है ना पैर होता है, कोई उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती, राइट। और वो सोशल मीडिया वीडियोस जो है वो आती भी कौन से वाले चैनल के ऊपर है, जो कि उन्हीं के चैनल्स हैं। ये ट्विटर किसका ट्विटर है भाई, हजरत शेख उल हदीस साहब का बनाया हुआ ट्विटर है, ये मौलाना पीर साहब का बनाया हुआ ट्विटर है, राइट, या ये जो है वो शेख उल इस्लाम साहब का बनाया हुआ ट्विटर है, ये फेसबुक है, ये किसका बनाया हुआ फेसबुक है, अल्लाह के विलायत कुबरा के दर्जे पे फाइज, क्या नाम है उसका, क्या था एक बड़ा मजे का उसका नाम बनाया था किसी ने आप में से, किसका है फेसबुक, मेटा, वो विलायत कुबरा के दर्जे पे फायज एक मोमिन है ना, और ट्विटर जो है वो तो और भी ज्यादा विलायत कुबरा के दर्जे पे फायज जो है उसका, पता नहीं आजकल सुना है कि शायद उसने बेच दिया है अपना वो एक्स, किसी अपने जैसे ही बेचा होगा या किसी ने, एक जुकरबर्ग है उसका, एक बड़ा अच्छा सा किसी ने बनाया था, जुकरबर्ग तो उसका असल नाम है ना शायद, जिंगर बंगर जिंगर बर्गर, ये ज्यादा आसान है याद रखना है इसको, जूकरबर्ग तो याद रखना मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल काम है, जिंगर बर्गर। ठीक है, तो ये कौन है, ये अल्लाह का वली। तो इस विलायत कुबरा के दर्जे पे फाइज इंसान ने जो जो प्लेटफॉर्म बनाया है उसी के ऊपर तो उड़ती 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 जो आपके पास वीडियोस आती हैं, और उसी के ऊपर उड़ते उड़ते तो आपके पास जो है वो सारे के सारे कॉमेंट्स आते हैं। हाउ डू यू ट्रस्ट ऑल ऑफ दैट, हाउ डू यू ट्रस्ट ऑल ऑफ दैट, किस बुनियाद पे आपने जो है उनके ऊपर एतमाद करके बैठे हुए कि वो तो नेक लोग हैं, वो तो अल्लाह के वली हैं, वो तो ये हैं और वो तो वो हैं। बस एक अल्लाह ही रह गया जिसने कि बस अपने नेकों को जो है ना वो इस तरह से हवाले किया हुआ है। ठीक है ना, तो सारा कसूर तो अल्लाह ही का ही हो गया ना फिर उसके बाद, हमारा तो कोई कसूर है ही नहीं, इंसानों का तो कोई कसूर है ही नहीं, नाउज बिल्ला सुमा नाउज बिल्ला, कसूर है तो सारा का सारा अल्लाह का। तो कुछ अकल के नाखून लेने की जरूरत है यार, खुदा का खौफ करें यार, खुदा का खौफ करें। मरना नहीं है क्या, मर के अल्लाह ताला को जवाब नहीं देना क्या कि क्या करके आए हो तुम यार ये। तो गुनाह का बिल्कुल ताल्लुक खत्म कर दिया गया है अजाब के साथ, और तौबा जो है ना वो बिल्कुल भूली बसरी किस्म की, ओल्ड फैशन किस्म की कोई चीज बना दी गई है जिसका कि कोई रेलेवेंस नहीं है इस वक्त दुनिया के अंदर, कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई उसकी जो है वो एप्लीकेबिलिटी नहीं है हमारी जिंदगी के अंदर और दुनिया के हालात के अंदर और मेरे अपने जाती हालात के अंदर और मेरे मुल्क के हालात के अंदर, तौबा का कोई ताल्लुक नहीं है हकीकत के साथ। क्या खेल खेल रहे हैं हम अपने साथ, कितना धोखा दोगे अपने आप को यार। तो फरमाते हैं कि जी पहला इस्तिस्ना ये है कि इल्ला मा युतला अलैकुम, यानी बजुज उन जानवरों के जिनकी हुर्मत कुरान में बयान कर दी गई है। ठीक है, कुरान तो फिर आखिर को अजीम शान है, उनको तो हमने पढ़ना है, माने या ना माने फिर भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हुर्मत कुरान में बयान कर दी गई है, मसलन मुर्दार जानवर या खिंजीर वगैरह। दूसरा इस्तिस्ना गैर मुहल्लिस सैदी व अंतुम हुरम से फरमाया गया है। ठीक है, अब ये एग्जेम्पशन हैं, यानी पहले जो है वो एक लार्जर सेट बयान कर दिया गया, अब उस सेट में से जो है वो एग्जेम्प्ट कर रहे हैं चीजों को, मुस्तस्ना कर रहे हैं चीजों को कि नहीं सारे के सारे नहीं है तुम्हारे लिए हलाल बल्कि ये हराम है। ठीक है, अंतुम हुरम वाले जो शिकार है, जिसका मतलब ये है कि चौपाए जानवर तुम्हारे लिए हलाल है और जंगल का शिकार भी तुम्हारे लिए हलाल है, मगर जबकि तुमने हज या उम्रे का एहराम बांधा हुआ हो तो उस वक्त शिकार करना जुर्म व गुनाह है, इससे बचो। आखिर आयत में इरशाद फरमाया इन अल्लाह यहकुमु मा युरीद, यानी अल्लाह ताला जो चाहता है हुक्म देता है, किसी को हक नहीं है कि उसके मानने में चून व चुरा करे, चू चुरा करे उसके मानने में, किसी को हक नहीं है इस बात का मानने में। ठीक है, और अगर तुम कर रहे हो ना मानने वाली गलती कर रहे हो तो बचोगे नहीं तुम, सजा से सजा मिलेगी उसके, उससे तुम बचोगे नहीं। ठीक है ना, यू विल नॉट बी लेफ्ट अलोन। इसमें शायद इस हिकमत की तरफ इशारा है कि इंसान के लिए बाज जानवरों को जबाह करके खाने की इजाजत कोई जुल्म नहीं है, ये उन जानवरों के ऊपर जुल्म नहीं है, जिस मालिक ने ये सब जानें बनाई हैं उसी ने पूरी हिकमत व बसीरत के साथ ये कानून भी बनाया है कि अदना को आला के लिए गिजा बनाया है। ठीक है, अदना को यानी जो लोअर दर्जे का होता है उसको अपर दर्जे के लिए गिजा बनाया है। जमीन की मिट्टी दरख्तों की गिजा है, जमीन की मिट्टी क्या है, जमादात, ये सबसे लोअर दर्जा है जमादात का अल्लाह की मखलूक में से। ठीक है, कयामत के दिन जहन्नुम की जो आग होगी ना, इसका फ्यूल कौन होगा, इसका फ्यूल क्या चीज होगी, वो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बता दिया है। और हाफिज साहब हमें बताएंगे वो आयत कौन सी थी। जी हुफाज़े कराम, उद्दत लिल काफिरीन, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ये वाली नहीं। क्या है भाई हुफाज़े कराम, इंसान और पत्थर। अब हाफिज नहीं है ना तो आप रोमन में ही लिखेंगे फिर। ठीक है, इंसान वकूदुहा नासु वल हिजार, वकूद उसका जो फ्यूल है ना, वत्तकुन नार अल्लती वकूदुहा नासु वल हिजारा, तो इसकी जो फ्यूल होगी जिसके अंदर, जिसकी वजह से वो आग भड़केगी, वो कौन दो चीजें होंगी, अल्लाह ताला के मखलूक में से कौन दो चीजें होंगी। अल हिजारा, हिजारा क्या है, ये जमादात की कैटेगरी में से है। ठीक है ना, ये पत्थर जो है ये मुख्तलिफ किस्म के पत्थर होते हैं। आप जो है वो साइंस, इधर हम साइंस से हम इनकार को थोड़ी करते हैं कि सारी साइंस जो है वो गुनाह है और बिल्कुल देखना ही नहीं चाहिए और कोई फायदा नहीं उठाए, हरगिज नहीं। तो उसी साइंस की किताब के अंदर, उसके अंदर जो है वो आप स्टोन्स की और रॉक्स की जो है ना वो कॉम्पोजिशन पढ़ लें, बहुत मुख्तलिफ किस्म के रॉक्स होते हैं। ठीक है ना, वो सारे के सारे रॉक ही कहलाते हैं। कोई जो होता है वो पता नहीं सेडिमेंटरी रॉक होता है, तो कोई जो है वो लाइमस्टोन रॉक होता है, तो कोई जो है वो मिट्टी के जर्रात से बना हुआ रॉक होता है, राइट। तो ये सब का सब जो है ना वो रॉक में दाखिल हो सकता है, अल हिजारा। तो ये मिट्टी विट्टी जो है ना, ये सब भी उसी जमादात की कैटेगरी में से है। ठीक है, रॉक्स भी मिट्टी भी जमादात की कैटेगरी में से है। तो अल्लाह ताला कहने का मकसद ये है कि जहन्नुम की आग में दो सबसे बदतरीन मखलूक होगी, वो कौन सी, कम तरीन मखलूक वो कौन सी, एक तो ये जमादात होंगे और दूसरे जो है वो इंसान होंगे जो कि ना मानने का जुर्म करते हैं, यानी काफिर, ना मानने का जुर्म, कमी कोताही का जुर्म नहीं बल्कि डिनाइल का जुर्म करने वाले वो इंसान होंगे, और उनको सबसे ऊंचे दर्जे से गिरा करके सबसे नीचे दर्जे के बराबर कर दिया जाएगा, और दोनों को उठा करके जहन्नुम के अंदर ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, वरना इंसान की असल पोजीशन क्या थी, असल उसका मकाम क्या था। हजरत आगे फरमाते हैं कि जमीन की मिट्टी दरख्तों की गजा है, और दरख्त जानवरों की गजा है, और जानवर इंसान की गजा है, इंसान से आला कोई मखलूक इस दुनिया में नहीं, यानी इस प्लैनेट अर्थ के अंदर। ठीक है ना, चाहे इसकी स्पेस में चले जाएं आप, और इसका अपना जो एनवायरनमेंट है, इसकी अपनी जो स्पेस है उसमें भी चले जाएं, इस पूरी की पूरी जगह पर इंसान से आला कोई मखलूक नहीं है, इसलिए इंसान किसी की गजा नहीं बन सकता, इंसान किसी की गजा नहीं बन सकता। ठीक है, जेन्युइन गजा, यानी वैसे तो शेर साहब जो है वो इंसान को खा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इंसान उनकी प्रॉपर डाइट नहीं है, उनकी डाइट जो है ना वो हिरन है, उनकी डाइट जो है वो उसके कम दर्जे के लोग हैं, इंसान उसकी डाइट नहीं है। वो तो इंसान पंगा करता है जाकर के लायन साहब से, तो फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं तुम्हें छट्टी का दूध याद दिलाता हूँ। ठीक है, तो हम ना करें उनके साथ ये सजन की हरकतें, तो फिर वो हमें क्यों खाएंगे, हमारे घरों में आकर के नहीं खाते वो, खाम खा में आकर के हमारे घरों में। ठीक है, बहरहाल तो ये है तरतीब। तो इंसान को अल्लाह ताला ने सबसे ऊंचा दर्जा दिया था, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से, यानी कुफर की वजह से, सबसे नीचे दर्जे के ऊपर वो खुद अपने आप को गिराता है। फइल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन नार अल्लती वकूदुहा नासु वल हिजारा उद्दत लिल काफिरी, काफिर ये हिजारा के बराबर की चीज है। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह सारे हिफाज़े कराम जिन्होंने आयात लिखी। अच्छा, टाइम कितना रह गया है, 7 मिनट, तो आगे की आयत भी हम शुरू कर लेते हैं। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मानने वालों, ए ईमान वालों, पिछली आयत की तरह यहाँ पर भी ईमान वालों को खिताब है। ला तुहिल्लु शाइरल्लाहि, हलाल मत करो, ठीक है, हलाल ना समझो शाइरल्लाह को, अल्लाह ताला की निशानियों को हलाल ना समझो। इन्न सफा व मरवा मिन शाइरिल्लाह, तो क्या हम सफा और मरवा को खाना शुरू कर देते हैं कि वो हलाल है, तो जाओ भी सफा को खाना शुरू हो गए, मरवा को खाना शुरू हो गए। वैसे ये और बात है कि किसी इंसान का नाम भी सफा और मरवा हो तो है, नहीं हलाल नहीं करो, क्या मतलब उनकी इज्जत को हलाल ना समझो अपने ऊपर, कि उनकी इज्जत खराब करना शुरू हो जाओ, ठीक है ना। और ये तो सफा और मरवा शायर अल्लाह है, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि ए बैतुल्ला, ए काबतुल्ला, तेरी इज्जत अपनी जगह पर, लेकिन एक मुसलमान की इज्जत तेरी इज्जत से भी ज्यादा है, एक मुसलमान की इज्जत तेरी इज्जत से भी ज्यादा है। तो इंसान तो सबसे बड़ा अल्लाह ताला का शायर अल्लाह है, अल्लाह ताला का की यानी चलती फिरती अल्लाह ताला की निशानी है। वफी अनफुसकुम अफला तुबसिरून, अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हारे अपने अंदर जो है ना वो गौर क्यों नहीं करते, तुम्हारे सामने अल्लाह ताला की हकीकत खुलेगी, अपने अंदर गौर करो। क्या मतलब, ये तो सबसे बड़ी निशानी है अल्लाह रब्बुल इज्जत की, इंसान सबसे अजीम मखलूक है अल्लाह ताला की, इंसान। सफा और मरवा उससे अजीम नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने तो काबतुल्ला का नाम लेकर के यानी कील ठोक दी इस बात के ऊपर, है ना, हद फासिल बयान फरमा दिया कि कोई भी चीज इंसान की इज्जत से ज्यादा अफजल नहीं हो सकती। और हम कुरान मजीद में तो पढ़ते हैं इन सफा वल मरवा मिन शाइर अल्लाह, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ला तुहिल्लु शाइर अल्लाह, लेकिन कैसे इसकी जो है ना वो हम धज्जियां भी घेरते हैं अल्लाह ताला के हुक्म की, जब हम दूसरों की पगड़ियां उछालते हैं, जब उनके ऊपर फब्तियां कसते हैं, राइट, अपनी गंदी जुबान जो है ना वो उनके ऊपर अनलीश कर देते हैं, जैसे होता है ना कुत्ता, कुत्ते को जो है ना वो लीश से बांधते हैं ना, जो उसको पट्टा नहीं लगाते कुत्ते को, ठीक है ना। तो अंग्रेजी में एक मुहावरा है अनलीशिंग, आपने कुत्ते का पट्टा खोल दिया, अब वो कुत्ता जो है ना वो अगले बंदे के ऊपर हमला करेगा। हम उसी तरीके से अपनी इस गंदी जुबान को अनलीश कर देते हैं, सोचते नहीं है क्या बक रहे हैं, सोचते नहीं है क्या बोल रहे हैं जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो। हाँ डांटते बहुत हैं, ये क्यों डांटते हैं इतना ज्यादा, इसका तो बड़ा ख्याल आता है ना, ये क्यों डांटते हैं इतना, अपनी हरकतें नहीं देखते, मैं आपकी कोई इज्जत खराब कर रहा हूं जाती तौर पर, या तो अल्लाह के कुरान की जो है वो तफसीर आपके सामने बयान कर रहा हूं, इस पे तो बड़ा नाक भौं चढ़ाते हैं अपनी। लेकिन जो एक दूसरे के साथ जो हरकतें करते हैं अपने घर के अंदर, बीवी की इज्जत खराब करते हैं, बीवी जो है वो शौहर की इज्जत खराब करती है, बच्चों की इज्जत खराब होते हैं, बच्चे बड़ों की इज्जत खराब करते हैं, और मोहल्ले वालों की इज्जत खराब करते हैं, उसकी कोई कोई फिक्र नहीं है उसकी, बल्कि उल्टा गुस्सा आता है अगर किसी ने शिकायत लगा दी तो। गुस्सा आता है ना, किसी ने शिकायत क्यों लगाई मेरी, अल्लाह के हुक्म को तोड़ते हो तुम, तुम्हें गुस्सा नहीं आता इस बात के ऊपर, क्या समझते हो अपने आप को, कहां बच के जाओगे तुम खुदा से। ला तुहिल्लु शाइर अल्लाह, हलाल मत समझो अल्लाह ताला की निशानियों को, कि तुम उनकी इज्जतें खराब करते फिर रहे हो। वला शहर अल हराम, और अदब वाले जो महीने हैं उनको भी खराब ना करो, आगे उसकी तफसीर आ रही है। वलल हदिया, और ना उस जानवर को, यानी जो नियाज काबा की हो, यानी जो कि कुर्बानी के लिए लेके जा रहे हो वहां पर हरम में। वलल कलाइदा, कलाइदा, और ना जिनके गले में पट्टा डालकर ले जाएं। वला आमीन अल बैत अल हराम, और ना आने वालों को हुरमत वाले घर की तरफ, बैतल हराम हुरमत वाला घर। यब्तगून फ़ज़लन मिन रब्बिहिम वरिदवाना, के उनके रब की का फजल तलाश करते हुए, यब्तगून इब्तगा यब्तगी इब्तगान, तलाश करते हुए फजल तुम उनके रब का, वरिदवाना और उसकी रजा। ठीक, रब जो है वो सिर्फ हमारा रब नहीं है ना, वो जानवरों का भी तो रब है ना, ठीक है। तो या तो जानवरों का रब मिर रब बिहिम, या ये कि जो उन जानवरों को लेके जाने वाले हैं उनका रब, जो कि रब के घर की तरफ अपने जानवरों को कुर्बान करने के लिए लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको हलाल मत समझो। वइज़ा हललतुम फस्तादू, और जब तुम हलाल हो जाओ यानी एहराम से बाहर निकल आओ, बाल काटने के बाद जब तुम हराम, तुम्हारा एहराम खत्म हो जाए, उसके बाद क्या करो, शिकार करो जा करके। अब सारे हाजी साहब जो है ना वो शिकार के लिए निकल पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है वैदा हालत तुम फस्तादू। वही होता है, शैतान क्या करता है, जहां पे हुक्म मानना था, जहां पे हुक्म पे अमल करना था वहां पे तो छुट्टी, और जहां पे नहीं था वो हुक्म, जहां पे इस्तेहबाब के दर्जे में था वहां पे तो शैतान अल्लाह का शुक्र है कि इतना जो है ना वो खुला खाता नहीं है कि कोई आकर के हाजियों को भी जो है ना वो शिकार के ऊपर रागब कर दे। कि देखो अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, वैदा हलत तुम फस्ताद हो, तो अब जाओ ना जाकर के शिकार पे, मौलवी लोगों ने तुम्हें जो है वो शिकार करने का आज तक नहीं बताया। एक आए थे ना अभी चंद दिन पहले, तो पता नहीं कौन है सोशल मीडिया के ऊपर, जिन्होंने वितर के बारे में फतवा दे दिया है कि यार 1400 साल से तुम जो वितर पढ़ रहे हो वो गलत वितर पढ़ रहे हो, तुम्हारे मौलवियों ने तुम्हें सही वितर पढ़ने का तरीका ही नहीं बताया। अब वो सब उसको सुन रहे हैं और सब उसको बाकायदा दे आर एक्चुअली पेइंग अटेंशन टू इट, एंड दे आर सम ऑफ देम आर जस्ट डिस्कसिंग अमंग देमसेल्व्स एंड सम ऑफ देम आर एक्चुअली आस्किंग सम अदर पीपल। या खुदा के बंदे यार, कुछ अकल के नाखूनों, तुम्हारी जिंदगी में कोई करने का काम नहीं रह गया? जो इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो ऊट पटांग इंसान आ जाए वो बकना शुरू करता है और तुम उसको सुनना शुरू कर देते हो, और उसके ऊपर यानी अपना ब्रेन सेल्स जो हैं वो उसके ऊपर खर्च करना शुरू कर देते हो। बकवास कर रहे हो कोई आकर के, 1300 साल से तुम्हें विदर पढ़नी नहीं आती एंड यू आर एक्चुअली पेइंग अटेंशन टू इट, राइट? एंड यू आर वेस्टिंग अदर पीपल्स टाइम्स। अपने टीचर्स को जो है पूछ रहो, ये विदर का तरीका सही है कि नहीं है, आप सही पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, या आप वही पढ़ते हैं कि मैं पढ़ता हूं। उन लोग क्या क्या बोलूं यार मैं इसके ऊपर, उलमा का टाइम खराब कर रहे हैं उस घटिया इंसान के इस वीडियो की बुनियाद पर। तो क्या हो गया है यार, क्या हो गया है? खुदा के बंदे, हम लोगों को तौबा करने की जरूरत है इन चीजों के ऊपर ना, ठीक है? तो कल को कोई और आ जाएगा कि दो कुरान में हुक्म है ना, वेदा हलल तुम फस्ता दू, तो मौलवियों ने तो आज तक तुम्हें बताया ही नहीं कि जो है तुम्हें शिकार भी करना था हज के अंदर हलाल होने के बाद, तो उसके ऊपर भी शुरू हो जाएंगे फिर। हाँ यार वाकई मौलवियों ने हमें सही दीन नहीं सिखाया, ठीक है भाई, ये इस्तेहबाब है कि हाँ अब तुम कर सकते हो इफ यू हैव टू, यू डोंट हैव टू, बट इफ यू हैव टू You are allowed, ठीक है? वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिद الحرامي अन तअतदू, और बायस ना हो तुमको इस बायस ना हो तुमको इस कौम की दुश्मनी, शनआनु कौमिन, जो कि तुमको रोकती थी मस्जिद हराम जाने से, अन तअतदू, इस पर कि तुम उन पर ज्यादती करने लगो, ठीक है? यानी उन्होंने जो तुम्हारे ऊपर ज्यादती करी थी तो तुम उसकी रेसिप्रोकेशन नहीं कर सकते अपनी अकल से। हाँ तुम्हें अल्लाह के रसूल हुक्म दें कि अब जाकर के उनसे बदला लो, जैसे उस्मान रजी अल्लाह तआला के कत्ल के जब अफवाह फैली थी, नबी अलैहिस्सलाम ने सारे सहाबा से बैत रिजवान ली थी कि हम उस्मान के खून का बदला लेंगे, वो बदला नबी अलैहिस्सलाम यानी ऊपर से हुक्म आ रहा था ये बदला लेना जायज है, लेकिन अपनी अकल से सोच करके हाँ उन्होंने मेरे साथ बुरा किया, नाउ लेट मी रेसिप्रोकेट, लेट मी गेट बैक टू हिम और हर इन माई ओन वे, नो इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि इस तरह से तुम अगर बदले लोगे तो तुम अपने आप को रोक नहीं सकोगे बल्कि तुम तजावुज कर जाओगे, ठीक है? हद से तजावुज कर जाओगे, अंताद, ठीक है? क्या लिखा है उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर, बड़ी ईद से पहले कुर्बानी के जानवर के मुतालिक मजाकिया वीडियोस भेजते हैं, वो भी इसी जमरे में आता है, कुर्बानी के जानवर से मुतालिक मजाकिया वीडियोस भेजते हैं भाई। कुर्बानी के हुक्म के ऊपर अगर मजाकिया कोई वीडियो बना के भेजी है वो तो 100% इसके अंदर आता है, लेकिन कुर्बानी के जानवर के मुतालिक पता नहीं कौन सी वाली मजाकिया वीडियो, या पता नहीं वो कोई कार्टून वार्टून भी तो है ना कुछ इस्लामी कार्टून जिनके अंदर भी कुर्बानी का, आप यार ये इतना खाम खाम इतना भी नहीं करें ना कि पता नहीं वो आप कौन से मजाक के वीडियो की बात कर रहे हैं। वतआवनु अलल बिर्र वत्तक्वा, और आपस में एक दूसरे के साथ तआवुन करो, ठीक है? ये तआवनु ये ऐसा वर्ब फॉर्म है कि जो कि आपस में एक दूसरे के साथ फेल के लिए इस्तेमाल होता है, तो एक दूसरे का के साथ तआवुन करो, बिर यानी नेकी के कामों में, व तकवा यानी गुनाहों से बचने के काम, एक दूसरे को मदद करो, वला तआवुन और मदद मत करो एक दूसरे की, अलल इस्म वल उदवान गुनाह के कामों में, और जुल्म यानी एक्सेस के कामों में एक दूसरे की मदद ना करो, प्रेशर में आकर के, पीयर प्रेशर में आकर के, खानदानी प्रेशर में आकर के, या किसी और किस्म के इस तरह के वजूहात में आकर के, या अपनी ख्वाहिशात की वजह से एक दूसरे की मदद ना करो। ठीक है, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। एक बेवकूफी की हरकत कर रहा है तो अब खुसूसन जो है वो बच्चों में, लड़कों में बहुत ज्यादा होती है, बीइंग पार्ट ऑफ द गैंग, राइट, जस्ट सो दैट वी डोंट फील लेफ्ट आउट ऑफ द गैंग, राइट। वो गैंग बनाया हुआ तो है, दो लड़कों ने या तीन लड़कों ने या चार लड़कों ने, वो बेवकूफी की हरकतें कर रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, अब तीन चार और भी उसके अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं ना, सो दैट वी आर ऑल्सो इन, है ना, हम भी इन साइडर्स में कंसिडर किए जाए। अब वो भी आकर के बेवकूफी की बातें, बेहूदगी की बातें, उल्टे सीधे जो है वो जोक्स, उल्टे सीधे कॉमेंट्स करेंगे, तो ये क्या है? ये है इस हुक्म की खिलाफ वर्जी, अल्लाह ताला के हुक्म को तोड़ना। वला ताआवनु अलल इस्मि वल उदवान, आप एक दूसरे को मदद कर रहे हैं बजाय इसके कि आप उनको रोकते, जैसे गुलाम रसूल साहब रोकते हैं, कार्टून तो बड़ा देखते हैं लेकिन करते वर्ते कुछ नहीं है उसके, गलत काम को रोकना और अच्छे काम के ऊपर मदद करना, ये नहीं करना आपने। वत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डरो, इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह ताला जो है वो सख्त अजाब, अल्लाह ताला का अजाब सख्त है, अल्लाह ताला शदीद है अजाब देने में। क्यों बयान कर रहे हैं इस हुक्म के बाद ये क्यों बयान कर रहे हैं कि अगर तुम नहीं करोगे ना तो अजाब आएगा। वो किस शक्ल में आएगा? तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से हट करके भी आ सकता है, जिसका कि तुम्हें तुम्हारे वहम गुमान में भी कभी नहीं होगा, लेकिन आएगा। और फिर उसके बाद जो तुम्हारी जिंदगी के अंदर आएंगे ना, नहुसतें और परेशानियां और जो है वो टेंशन और टॉर्चर और ये सारी चीजें, अब तुम फिर भी अगर बाज नहीं आओगे और शैतान की फिर भी मानते रहोगे तो तुम क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा यही कहोगे, कोई बात नहीं, होता ही रहता है, हैं, इसका कोई ताल्लुक ही थोड़ी है, मैंने कोई थोड़ी अल्लाह का हुक्म तोड़ा था, और उस गुनाह वुना से कुछ नहीं होता, ये सब झूठ बोलोगे, अपने आप को डिसीव करते रहोगे इसी तरीके से, हत्ता कि तुम्हें मौत आ जाएगी और मौत के बाद तुम्हारी सारी की सारी हकीकतें खुल जाएंगी तुम्हारे सामने। ठीक है ना, अल्लाह ताला से हम तौबा करते हैं कि ए अल्लाह, हमें जो कुरान मजीद में बताया गया है, ए अल्लाह, ना अपने जुबान से किसी चीज का हम इनकार करें, ना अपने दिल के अंदर किसी चीज का हम इनकार करें, ना अपने अमल से हम किसी चीज का इनकार करें, ए अल्लाह, हमें से आपकी पनाह मांगते हैं, ए अल्लाह, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा ईमान खत्म हो जाएगा, ए अल्लाह, हमारे औलादों की ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे घर बार अहल आयाल के ईमान की हिफाजत फरमा, सारे मोमिनीन की ईमान की हिफाजत फरमा। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم